Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Radha, Shyama Sundara, Shyama Sundara, Jaya Radha. Radha, Shyama Sundara, Shyama Sundara, Jaya Radha. Jaya Krishna, Balaram. Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. भगवान हरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद तोयामनय ग्रह अनयाराधितो नूनं भगवान हरीश्वर जन्नो विहाय गोविंद तोयामनय ग्रह अनयाराधितो नूनं भगवान हरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद तोयामनय ग्रह अनया उसके द्वारा आराधित भलीभांति पूजित नूनम निश्चय ही भगवान भगवान हरि ही कृष्ण ईश्वर परम नियंत्रण यत् इतना की नहा हमको विहाय त्याग कर गोविंद भगवान गोविंद पिता प्रसन्न याम जिसको अनायत ले गए रह एकांत स्थान में अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा अनुवाद इस विशिष्ट गोपी ने निश्चित ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूरी तरह पूजा की है क्योंकि वे उसके इतनी प्रसन्न हो गए कि उन्होंने हम सबको छोड़ दिया और उसे एकांत स्थान में ले आए। कृपया दोहराइए, इस विशिष्ट गोपी ने निश्चित ही सर्वशक्तिमान
भगवान गोविंद की पूरी तरह पूजा की होगी, क्योंकि वे उसके इतनी प्रसन्न हो गए कि उन्होंने हम सबको छोड़ दिया और उसे एकांत स्थान में ले आई। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या है कि आराधित शब्द श्रीमती राधारानी के बाबा राधारानी के लिए आया है। उनकी टीका है कि अर्थात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि सुखदेव गोस्वामी ने उसका नाम अर्थात राधा का नाम गुप्त रखने का भरसक प्रयास किया है, किंतु उनके मुखरूपी चंद्रमा से वह स्वतः प्रकाशित हो उठते हैं। उन्होंने राधा का नाम ले लिया है, यह श्रीमती राधा रानी की कृपा है। अतः आराधित शब्द राधा के सौभाग्य को सूचित करने वाला बिंदु भी घोष है। यद्यपि गोपियां श्रीमती राधारानी के प्रति ईर्ष्यालु लगती है, किंतु वे यह देखकर पुलकित थी कि राधा ने श्रीकृष्ण को बंदी बना दिया था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रील रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल निरामणि में श्रीमती राधारानी के पदचिन्हों का भी विस्तृत वर्णन किए हैं। उसे वर्णन किए उसे उद्धृत किया है कि उनके दाए पाव के अंगूठे के नीचे जौ का चिन्ह है, उनके उसके नीचे छत्र का चिन्ह है, उसके छत्र था छत्र के नीचे बाजूबंद कंगन है, उनके पांव के बीच में एक खड़ी रेखा अंगूठी के साथ दूसरे अंगुली के बीच तक जाती है, बीच के अंगुली के नीचे कमर है, उसके नीचे ध्वजा है, ध्वजा का नीचे रता जिससे फूल लगा है, उनके पांव के सुगनी के नीचे अंकुश है और उनकी गली में अर्धचंद्र है। इस तरह उनके बाएं पाए के 11 चिन्ह है, उनके दाहिने पांव के अंगूठे के नीचे शंख है और उसके नीचे भाला है, उनके दाएं पांव के सुगनी के नीचे यज्ञवेदी है जिसके नीचे कुंडल है और कुंडल के नीचे फिर भाला है, दूसरी तीसरी चौथी अंगुली तथा सुगनी के नीचे पर्वत का चिन्ह है जिसके नीचे रथ है और एड़ी में मछली का चिन्ह। इस तरह श्रीमती राधारानी के चरण कमल की तलवों की 11 विशिष्ट चिन्ह है। ओम अज्ञानाति निरन्यस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदामहं कदाशोपदान्वितम्। वंदे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णा चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदान सहगणा ललिता श्री विशाखानितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महाबलान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभ अनुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु देवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आज राधा रानी के आविर्भाव की तिथि है और विशेष रूप में ये पृथ्वी लोक बाय वृंदावन धाम इसीलिए विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वृंदावन धाम में कौन निवास करती है? श्रीमती राधा रानी। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काशी उपासना ब्रजवधू वर्गेण जातम श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमरम प्रेम कुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदम तत्र वरनापर। हम गौड़िया वैष्णव होने के नाते हम चैतन्य महाप्रभु की मत के अवलंबी हैं, मैं चैतन्य महाप्रभु की मार्गानुसरण करते हैं और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमारे जो आराध्य देव हैं वो ब्रजन नंदन श्री कृष्ण आराध्य भगवान ब्रजेश तनय और उसी प्रकार उनकी नित्य धाम वृंदावन भी हमारा आराध्य स्थली है। वृंदावन इसलिए आराध्य स्थली है क्योंकि यहाँ पर सदा वृंदावनेश्वरी श्री राधा अपने समस्त ब्रजेश अपने संगियों के साथ में सखियों के साथ में समस्त ब्रजवासियों के साथ सदा निवास करती है और राधा कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को चरण कमल को प्राप्त करने के लिए हमें ब्रज गोपियों की मार्गानुसरण करना चाहिए। ब्रजवधू वर्गेण जाकल्पिता ये प्रमाण कहाँ पर दी गई है? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमरम। हमारे जीवन के लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण के चरण में प्रेम भक्ति प्राप्त करना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की सेवा राधा रानी की मार्गानुसरण से उन्हीं जैसे ही मार्ग उन्होंने हमें प्रदर्शन किए उसी ब्रजवासियों की मार्गानुसरण ब्रज गोपियों की मार्गानुसरण से ही भगवान की प्रसन्न की जा सकती है। आदि पुराण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन को त्रिलोक्ये पृथ्वी धन्य यत्र वृंदावनम पुरी तत्रापि गोपिका पार्थ यत्र राधाभिधा मम। तीनों लोक में सबसे श्रेष्ठ ये पृथ्वी लोक है क्योंकि पृथ्वी लोक में मथुरा मंडल तथा वृंदावन धाम है, लेकिन ये समस्त वृंदावन वासियों में से गोपियां सर्वोत्तम है, लेकिन ये समस्त गोपियां में से भगवान कहते कि वृंदावन मुझे इतनी प्रिय क्योंकि इसमें यत्र राधा यहाँ पर कौन निवास करती है? राधे वृंदावनेश्वरी विशेष रूप में जहाँ निवास करती है इसलिए ये वृंदावन धाम भगवान को अति प्रिय है क्योंकि राधा रानी का ही धाम है। इस प्रकार गजेन्द्र नंदन कृष्ण वृंदावन परित्यज्य पारण एक गच्छति एक पैर भी बाहर नहीं निकाल कर जाते हैं, उसी प्रकार राधा रानी की सदा कहाँ रहती है? वृंदावन में वास करती है, वृंदावनेश्वरी है। तो इस प्रकार कई श्लोक में बता दी है, पद्म पुराण में भी कहा जाता कि कई लोग के पृथ्वी मन्य जम्बू दीप ततो वरम तत्रापि भारतम वर्षम तत्रापि मथुरापुरी तत्र वृंदावनम नाम तत्र गोपी कदम्बकम तत्र राधा सखी वर्गा तत्रापि राधिका वरा। ये तीनों लोक में जम्बूद्वीप जहाँ जिसको भारतवर्ष कहते हैं ये बड़े महत्व ये सबसे श्रेष्ठ है, तीनों लोक में भारतवर्ष ही सर्वोत्तम है लेकिन भारतवर्ष में भी मथुरापुरी सर्वोत्तम माना जाती है और मथुरापुरी में भी सर्वश्रेष्ठ है। मथुरापुरी में वृंदावन मथुरा मथुरापुरी में सर्वोत्तम स्थान है। लेकिन ये मथुरापुरी में निवास करने वाले वृंदावन में रहने वाले जितने भी निवासी उनमें से गोपियां सर्वश्रेष्ठ हैं और समस्त गोपियां में से राधा ही मरा सर्वोत्तम प्रेमिका है। कौन कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। यदि वो राधा रानी की इतनी विशेष महिमाओं को भिन्न भिन्न पुराण में वर्णन की गई है, लेकिन आज जैसे श्लोक पढ़ रहे थे श्रीमद भागवतम के संपूर्ण श्रीमद भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से राधा रानी के नाम को उच्चारण नहीं किया, क्योंकि आचार्य लोग ने कहते कि सुखदेव गोस्वामी ये उनकी पूर्व जन्म में बा वो राधा रानी का ही पोता थे। कौन? सुखदेव गोस्वामी। जैसे ही इसलिए वो अपने स्वामिनी के नाम को उच्चारण करने के लिए पसंद नहीं, क्योंकि एक बार यदि राधा राम राधा नाम को उच्चारण करते तो वो समाधि में समाधिस्थ हो जाते। फिर और भागवत कौन सुनाता? किनको? परीक्षित महाराज। उनमें राधा में इतनी निवेश थी, राधा राधा की लीला में, राधा की महिमा में, और वो इसलिए जानबूझ कर इसको टालने के लिए प्रयास किया जिसे राधा रानी के नाम को उच्चारण न करिए। एक बार यदि जय श्री राधे ऐसे हजारों राधा नाम देने से कुछ हो रहा है, ऐसे राधे राधे कहने कुछ नहीं बरकने। सुखदेव गोस्वामी इतनी राधा रानी की इतनी प्रेमी भक्त थे, क्योंकि एक बार यदि वो राधा नाम लेते तो वही समाधि हो जाते। फिर और भागवत सुनाने के लिए उनका समय नहीं होता, बिल्कुल परीक्षित महाराज से बैठा रह जाते हैं। इसलिए जान बूझ कर उन्होंने राधा रानी के नाम को उच्चारण नहीं किया। कोई कहीं कहते कि तो उनकी इष्ट होने के कारण अपने इष्ट के नाम को ऐसे सहज इतने सहज को लेना वो नहीं चाहता। आजकल में देखो आप उड़ीसा में बंगाल में जाओगे तो स्त्रियां होती हैं अपने पति के नाम नहीं लेती है, डायरेक्ट पति के नाम लेकर नहीं बुलाती, अपने बच्चे के नाम से ऐड करती हैं। राम राम की माँ नहीं सॉरी राम की पिताजी हैं, राम की पापा तुम्हारे पिताजी बोला पिताजी जो लड़का को भेजते आते हैं एक बात दूसरे को संबंधित करते, तो फिर आप लड़का के पिताजी ऐसे बार लड़की की पिताजी ऐसे कहा था संबंधित करते, डायरेक्ट नाम नहीं लेते। एक मर्यादा है वैदिक संस्कृति। जैसे ये सुखदेव गोस्वामी ये डायरेक्ट भगवान का यदि आपकी स्वामिनी राधा रानी का ही नाम उच्चारण करना इतनी अच्छा नहीं चाहिए, बहुत सहज अभाव से प्रभुपाद जी ने बा प्रभुपाद जी गुरु महाराज डिवाइन देश भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी उन्होंने भी इस प्रकार जैसे ज्यादा राधे 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 कहना सुनना या इसे बोलना ज्यादा तो पसंद नहीं करते। गोपाल जी चैतन्य चेतन के कारण से अपने एक तात्पर्य देखते हैं कि देखो हाँ व्यक्ति राधा राधा मैंने रड़ती होगा अपने मुख में रड़ता होगा, लेकिन वो अपने कोई धोबी का पत्नी राधा होगा है जो अति सुंदरी होगी और उसके प्रति उसकी मति विचलित होता होगा, वो राधा बोलता होगा और चिंतन होता होता है वो कोई धोबी की पत्नी राधा की। ऐसा ही प्रभुपाद जी ने पसंद नहीं करते थे जहाँ जहाँ क्योंकि राधा रानी के सर्वोत्तम भक्त कौन है संसार में है सुखदेव गोस्वामी बात सुना प्रभुपाद जी, क्योंकि उनके पिताजी गौर मोहन दे ने सदा प्रार्थना यही करते थे कि मेरे साधु संत से आशीर्वाद मांगते थे मेरे लाला को ही आशीर्वाद करें कि राधा रानी का भक्त बन जाए, राधा रानी भक्त बने और भागवत की प्रचार पूरा दुनिया में करे। तो गुरुमान दे के दोनों इच्छा पूर्ण हुआ है। राधा रानी इसलिए सर्वोत्तम भक्त जो है शील प्रभुपाद, लेकिन उन्होंने प्रभुपाद जी इसे लाइक नहीं करते थे। राधे राधे कहते नाचना बरसाना बरसाना में राधे वृंदावन में राधे इधर राधे उधर राधे है क्या है इसमें राधा रानी तुम्हारे इंद्र तुप्ति के लिए नहीं है, राधा रानी के नाम इतनी सस्ता धर्म में लेने के लिए हमारे आचार्य लोग ने इसे नहीं समझा। राधापुर में एक व्यक्ति रहता था दिन रात, वो भक्ति के नाम सरस्वती ठाकुर के शिष्य था और दिन रात वो रखते थे राधे 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 24 घंटे लगता है हरे कृष्ण मंत्र बोलते। तो ये भक्ति के नाम सरस्वती ठाकुर ने जब राधापुर में पधारे बाबा जी लोग ने कहे कि महाराज आपके बहुत बड़ा शिष्य यहाँ रहता है, हम लोग प्रसन्न हो गए इतनी अच्छा शिष्य है आपका, 24 घंटे क्या रखता वो उसका जीवा से तो राधा के नाम को भी छू पड़ता ही बच्ची हम सबसे ठाकुर कहे कि यदि वो मेरा शिष्य है, मैंने तो इसके ऐसा काम करने नहीं कहा, आप लोग बोल रहे कि वो मेरा शिष्य है, मेरा शिष्य तो मेरा आदेश पालन करेगा ना, सर शासन में रहता वो शिष्य है। मैंने इसको दीक्षा देकर बोला था क्या चलता जपा करने के लिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो सदा राधा 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 इसे करने के लिए नहीं बोला, इसलिए तीसरे नाम अपराध कर रहा क्या गुरु की। उसके बाद उन्होंने कहे कि देखो यदि केवल कोई राधे 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 रड़ता है तो उसको देखने के लिए कौन आती है, राधा रानी नहीं आती है, राधा रानी तो उसको इतने पसंद नहीं होती क्या, तो उसको देखने के लिए कृष्ण आती है। कहते कि मेरे प्रिया का नाम कौन ले रहा है, ये इसलिए भाग्यशाली जीव कौन है जो सदा राधा नाम रख रहे हैं, कृष्ण आते देखने के लिए। यदि कोई सब सदा क्या जपता है कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण ऐसे जपते रहता दिन रात, तो कृष्ण देखने के लिए इसको नहीं आते हैं, कौन देखने आता है, राधा देखने आते कौन है। लेकिन हम अकेले कृष्ण या अकेले राधा को देखना नहीं चाहते है? राधा कृष्ण प्राण मरो कौन कहा, कौन कहा इसको, राधा कृष्ण प्राण मरो जुगाकिशोर, राधा कृष्ण
आता
एकांत में जो उनके समस्त अभिष्ट को पूर्ण करने वाली राधा, इसलिए भगवान ने अन्य समस्त गोपियां को छोड़कर उन्हीं को अकेले लेकर महाराज की बीच में इनको लेकर अकेले चले गए। इसलिए सारे गोपियां लोग ने कहने लगे कि उस जो विशिष्ट गोपी के चरण चिन्ह को देखो इस स्थान पर पड़ी हुई है। अत्यधिक समस्त गोपियां ने में से केवल यही एकांत स्थान में ली जाई गई, यहाँ जहाँ वह कृष्ण के अधरों का पान कर रही है। देखो ना, हमें यहाँ पर उसके पदचिन्ह नहीं देख रही है, स्पष्ट है कि घास तथा कुछ उसके पाँव के कमल बा कोमल तलवे की कष्ट पहुंचा रहे होंगे। अतः प्रेमी ने अपनी प्रेयसी को उठा लिया होगा। कुछ रास्ता आगे आगे जाने के बाद गोपियों को दो पैर में तो मैंने दोनों पहले दो दो व्यक्ति के देखा दिखाई पड़ती थी, कृष्ण की और राधा की। लेकिन कुछ समय आगे जाने में केवल एक ही पद चिन्ह देखे थे। तो मैं सोचे कि अभी राधा रानी को अपने बल से कृष्ण ने इनको आलिंगन करते हुए अपने काल में उठा दिए। इसलिए अपने प्रेमिका के प्रति विशेष मोहित होने के कारण मेरी प्यारी गोपियां जरा देखो ना किस तरह स्थान पर कामी कृष्ण के पदचिन्ह में गहरी धंसी हुई है। अपनी प्रियतमा के भार को वहन करना अवश्य ही उसके लिए कठिन हो गया है। और यहाँ पर तो उस चतुर छोरे ने कुछ फूल चुनने के लिए उससे नीचे रख दिया हो। जरा देखो किस तरह प्रिया कृष्ण ने यहाँ पर अपनी प्रिया के लिए फूल चुने हैं। यहाँ उसके पांव के अगले हिस्से का पंजे का ही निशान पड़ा हुआ है, क्योंकि फूलों तक पहुंचने के लिए वे अपने पंजों के बल खड़े हुए हैं। यहाँ कृष्ण यहाँ पर निश्चित रूप से अपनी प्रेयसी के साथ उसके केस संवारने के लिए बैठे थे। उस कामी लड़के ने उस कामुक लड़की के लिए उस फूलों से जुड़ा बनाया होगा जिससे उसकी एकत्र गोपियां लोग नहीं इसे बाह्य रूप से दिखाई पड़ता कि उन्होंने ईर्ष्या को प्रकट करके ही राधा रानी के मन ऐसे कहते कि देखो हम सभी इतनी आपने कोई सेवा नहीं किया, वो अकेली सेवा की इसी को लेकर भाग गए गोविंद के लिए अंतरित हो गए। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने राधा रानी की महिमा को गायन करती थी। और विशेष रूप में जो सपक्ष गोपियां ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद बड़े हर्षित हो रहे थे कि राधा रानी को लेकर कृष्ण ने अंतरित हो। तो इसी प्रकार राधा रानी की तो महिमा अशेष है, मदन मोहन मोहिनी के रूप में जानी जाती है। कृष्ण को मोहित करने वाली ही एकमात्र राधा रानी ही समर्थ है। राधा भाव को समझने के लिए ही कृष्ण फिर किस रूप में आए, गौरांगी के रूप में आए कि एक राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्य अन्य विलस है लीला अनुसार। वो एक ही आत्मा है लेकिन दोनों देह केवल अलग अलग देह धारण किए हैं कृष्ण और राधा के रूप में लीलाओं को आस्वादन करने के लिए। जैसे आदि पुराण में कहा गया कि राधा रानी की कैसे कैसे आविर्भाव हुई, आध्यात्मिक जगत में राधा रानी कैसे प्रकट हुई कि प्रारंभ से राधा रानी की राधा ये दो शब्द है, क्या रा और राधा। रा शब्द का अर्थ है रास मंडल, क्योंकि राशेश्वरी के रूप में जानी जाती है राधा। धा का अर्थ धावमान। जब सृष्टि के प्रारंभ से कोई भी नहीं था, एकमात्र कृष्ण ही उपस्थित थे। श्रीमद भागवत की चतुर्थी की पहला श्लोक में कहा जाता है कि भगवान कहते कि अहम एवा सेवाग्रे नान्यत सत असत पराम पश्चात हम जैसे जो वशिष्य तो सो वस्तु है। जो कुछ भी ये संसार में नहीं था, सत असत किसी के भी प्रकट नहीं हुआ था, तब कौन था कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण अपने नित्य गुरु को वृंदावन में एकांत जो राज मंडल में बैठे हुए थे, सतश्रृंग पर्वत गोवर्धन के नाम आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में क्या है सतश्रृंग, इस भौतिक जगत में भौम वृंदावन में इसके नाम गोवर्धन। तो सतश्रृंग बा गोवर्धन के तलहटी पर एकांत में बैठे हुए थे रत्न वेदी पर कृष्ण। तो उनके मन में हटात लीलाओं को आस्वादन करने की इच्छा प्रकट होती, उनकी इच्छा प्रकट होते ही उनकी बालांगों से प्रकट हुई। कौन प्रकट होती है, राधा रानी प्रकट हो जाती है। इसलिए वो एक थे लेकिन अभी दो बन गए हैं। राधा कृष्ण एक आत्मा दी देह, अभी दो देह धारण कर लिए राधा एंड कृष्ण। भगवान की मंत्रकरण की भावना को जानते हुए राधा रानी ने तुरंत ही भागते भागते जाती है पास में जंगल से बहुत सुंदर फूलों को एकाठी करती है, नंदिया माला की माला है, बहुत सुंदर माला बनाकर भगवान के चरण बने गले में पहनाती, भगवान को पहनाती, वैजयंती माला बा माला की माला बनाकर भगवान को पहनाई। बनवाली के रूप में भगवान जाने जाती है। भगवान के दूसरे नाम क्या? बनवाली है। जमुना तीरे बसती बने बनवाली, बनवाली नाम में जाने जाती है, इसलिए उनको माला पहना राधा रानी माला पहनाती है, क्योंकि रास मंडल में इनकी प्रकट हुई अथा रास शब्द, इसलिए पहला उनके नाम पहला शब्द ही रास, क्योंकि रास मंडल से इनकी प्रकट हुई और प्रकट होकर भगवान के अंतकरण की भावना को जानने जानते हुए उनको प्रसन्न करने के लिए भागते भागकर तुरंत जाकर पुष्प तोड़कर माला बनाकर इनको पहनाई। तुरंत भागने के कारण दौड़ने के कारण घालवान के कारण उनके नाम था, इसलिए उनके नाम क्या हुआ? इस प्रकार राधा रानी की आध्यात्मिक जगत में प्रकट होती है। कई कहानियां शास्त्र में पुराण में वर्णन की जाती है राधा रानी जैसे भौतिक भ्रमो वृंदावन में कैसे प्रकट हुई, क्यों यहाँ पर क्यों आई, तो नित्य गोलोकेश्वरी गोलोक वृंदावन में रहती थी, प्रभाव तो पुराण में सुंदर कहानी बताई जाती थी, उस समय भी बहुत लिमिट है कि राधा रानी के साथ में भी राधा रानी उनकी अत्यंत प्रेयसिता थी, लेकिन फिर वो अन्य अन्य गोपियों गोपिकाओं के साथ ही कृष्ण कभी कभी लीला में भाग लेते थे, अन्य अन्य गोपियों के पास में भी जाते। कोई पिछले आप ड्रामा देख रहे हो, ड्रामा के केवल हीरो हीरोइन रहेंगे, उनमें से विलियन कोई नहीं रहेगा, तो कुछ ड्रामा का महत्व होता है। राधा कृष्ण तो एक आत्मा दो शरीर धारण कर लीलाओं का आस्वादन करने के लिए, लेकिन लीला में थोड़ा इनको और अधिक पुष्ट करने के लिए अन्य अन्य गोपियों के पास में भी कभी कभी कृष्ण जाते थे, गिरजा गोपी के पास नहीं जाते थे, गिरजा कुंज में गिरजा गोपी के कुंज में कभी एक बार थे तो एकांत में थे, लेकिन कुंज की दर्जे पर श्री राम को बैठा दिए थे भगवान ने, अपने सखा श्री राम को बैठा दिए थे, राधा रानी बड़ा भाई है बैठे थे और कहते कि देखो अभी किसी को अंदर आने नहीं देना, मैं उनका गिरजे के साथ काम किया, लेकिन जो गोपियों को पता चलती है राधा रानी की गोप मैंने शक्तियों को और तो राधा रानी क्रोधित होकर आती है गिरजा को उनके प्रवेश करने के, लेकिन उनको रुक देती है गेट में कौन, राम रुक देती है। राधा रानी ने उसी के अनुकूलक मुझे क्या पता कौन है, मुझे तो कोई लड्डू दिया कृष्ण में खा रहा हूँ, तो राधा रानी बड़ा क्रोध है, तुम मेरे भाई होकर तो मेरी भलाई भी नहीं चाहती, कृष्ण की तुम गिरजा को नहीं फिर भी तुम मुझे बोलती नहीं है, क्रोधित होकर राधा रानी बलपूर्वक अंदर में कुंज में प्रवेश करती है और कृष्ण को बहुत भर्सना करती है, बुरी बुरी वार्ता करती है, लेकिन भगवान कहते कि गोपियां लोग जो मुझे भर्सन करते हैं ये वेद की स्थिति से भी अधिक मुझे आनंद प्रदान करती है, वेद स्थिति हईते से ही हरए अमार मन, वेद स्थिति से भी अधिक मुझे प्रसन्न करती है यदि राधा रानी व गोपियां क्रोधित होकर मुझे भर्सना करती है, लेकिन सिद्धांत होता कि इतनी क्यों क्रोधित होकर कुछ भी जो भी है भगवान स्वयं हरि ईश्वर है और उनके प्रति ऐसे ही बुरे बुरे भाषा प्रयोग करना ठीक नहीं है, उसको सहन नहीं हुआ, बिल्कुल सिद्धांत ऐसे क्यों कहते हो, भगवान क्यों प्रभु है, उनका कौन सा दोष हो गया, तुम अकेले ही सब कुछ केवल कृष्ण का आस्वादन करना चाहते, कृष्ण के साथ में रसास्वादन करना चाहती हूँ और दूसरे की भलाई कुछ अन्य गोपियों के बारे में तो कुछ नहीं सोचती, ऐसा कुछ उनमें तर्क वितर्क होने के कारण राधा ने क्रोधित होकर श्री राम को कहती देख तुम्हें केवल कृष्ण की महिमा को जानता, मेरे से तुम ज्यादा कृष्ण को समझते हो, तुम अपने बहुत अहंकारी समझते हो, तुम केवल कृष्ण को जानते हो, राधा को राधा के सुख विधान करना तुम नहीं चाहता, इसीलिए मैं अभिशाप देता हूँ कि तुम राक्षस श्री में चले, श्री राम भी कुछ छोड़ने वाला नहीं, वो भी क्रोधित हुआ, ठीक है तुम इतनी स्वार्थी है सबसे मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, इसलिए मैं भी तुमको कहता हूँ कि तुम मत के लोग में जाकर साधारण मनुष्य की तरफ तेरे मन में क्रोध क्रोधित क्रोध भावना आ रहा है, इसलिए तुझे जाकर मत के लोग में मानव जोनी में जाकर जन्म लेना पड़ेगा, तुम भी इसी प्रकार सौ साल तक कृष्ण से विच्छेद दुख है भोगना पड़ता। सही वर्णन आता है प्रणाम। इसलिए श्री राम को फिर शंखचूड़ के रूप में, जलंधर के रूप में अवतीर्ण होना पड़ता है, और वो भी वृंदादेव के साथ भगवान की प्रेरणा ही होता है। बात में वो कहानी अलग है, तुलसी महात्म तुलसी का कार्तिक महात्म से वर्णन आता है। लेकिन राधारणी इसलिए भी बाध्य होकर फिर उनको भी धरा पर आना पड़ता है। राधारणी सारे लीला भगवान की इच्छा से ही संगठित हो रहे थे। भगवान चाहते थे कि मत्स्य लोक में आकर लीला करने के लिए, ब्रह्मा जी के एक दिन में तो एक बार इनको आना ही है। भगवान जिस प्रकार स्वयं कृष्ण श्याम सुंदर जो वैवस्वत मनु के सप्तम मनोन्तर के जो 28वें चतुर्युग के द्वापर में अवतीर्ण होते हैं संसार में, उसी प्रकार स्वयं कृष्ण श्याम सुंदर अवतीर्ण होते तभी राधारानी भी इस धरा पर अवतीर्ण होती है। वही ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार वो धरा पर आती है। राधारानी ने रोते रोते कृष्ण को कहती क्या होगा क्या हुआ, मुझे ऐसे अभिशाप मिल गया, तुम्हें क्या करूं, मैं तो मर्त्यलोक में जाना नहीं चाहती हूँ। यदि मैं मर्त्यलोक में जाना है, मुझे जाना है तो मेरे शर्त है, मर्त्यलोक में कौन जाएगा, गोवर्धन सत्य सिंह पर्वत वहां पर पधारेंगे, गोवर्धन भी आएंगे, जमुना भी जाएगा है, और सारे मेरे सहन जो सब गोपियां सब ये सभी जिस पधारेंगे तभी नहीं पता। भगवान ने मुस्कुराते हुए ऐसे अनुमोदन करते हैं। इसलिए राधारानी फिर इस मर्त्यलोक में वृषभानु नंदिनी वृषभानु तृप्ति के तक को आश्रय करके इस धरा पर अवतीर्ण होती है। लेकिन ललित माधव नाटक के प्रारंभ से रूप गोस्वामी ने पूर्णवासी और गार्गी गर्गमुनि के पुत्री गार्गी के दोनों की बातचीत के माध्यम से राधारानी के आविर्भाव को इतिहास को थोड़ा वर्णन करते हैं। जब रूपानुगम वैष्णव है तो रूप गोस्वामी कहते कि पूर्णवासी ने एक बार वर्णन करती है गार्गी को गर्गमुनि के पुत्री को, देखो ये जो राधा है इसको गांधर्विका भी कहते हैं, और ये राधा किसकी पुत्री है, विंध्याचल की पुत्री है। तो जो पति आए विंध्याचल की पुत्री क्या कह रहे आप, मेरे पिताजी गर्गमुनि ने मुझे मैं सब लोग जानते ब्रज में कि वो राधा किसकी पुत्री है, वृषभानु दुलारी है, वृषभानु की पुत्री है, आप ऐसे कैसे कह देते कि वो गर्गमुनि किसका पुत्री है, विंध्याचल की। पूर्णवासी बोले थोड़ा भज्य तो धारण करो, मैं बताती हूँ आस्ते आस्ते। तो उन्होंने आस्ते फिर बताते हैं किस प्रकार विंध्याचल पर्वत और हिमालय पर्वत में दोनों में बड़ा कॉम्पिटिशन चलता है। हिमालय पर्वत की पुत्री कौन है, पार्वती, पार्वती के पति कौन, शिव जी देवदेव महादेव। इसलिए विंध्याचल पर्वत सोचते कि अच्छा हिमालय बड़ा पड्डा मैंने बड़े अहंकार था कि मेरे देखो मेरे इतना बड़ा जामाता मुझे मिला है, शंकर जी मेरे क्या है जामाता है। विंध्याचल में तपस्या करने लगे कि मुझे भी ऐसा ही एक जामाता मुझे प्राप्त होना होगा जो कि शंकर जी को महादेव को भी विजय कर सकता है। इसलिए विंध्याचल कठोर तपस्या करने लगा, 3000 साल एक बार तो तपस्या करते करते पूरे सुमेरु पर्वत से भी ऊंचा बनना चाहता था वो अगस्त्य मुनि ने इसको नीचे रुका दिए थे उसको। लेकिन अभी कह सकता कि मेरे को ऐसा जामाता मिलना चाहिए जो कि महादेव को विजय करने वाला, 1000 साल तपस्या करने से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी कहते क्या चाहते हो, माता मुझे जो भी वर चाहते हो मैं पूर्ण करूंगा। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न होते थे इतनी कठोर तपस्या देखते, उन्होंने कहा कि मुझे एक जामाता प्राप्त होना चाहिए जो कि महादेव को भी विजय करने वाला हो। ब्रह्मा जी का तथास्तु कहती कहती बोले बात में सुख मिला जा रही, शंकर जी को भी युद्ध में पराजय करने वाला कौन है संसार में, तो केवल एकमात्र कृष्ण ही ये कार्य कर सकते हैं, भगवान स्वयं ब्रज। लेकिन कृष्ण की फिर धरा पर कैसे मने वो फिर जामाता होंगे तो किसका पति होगा ना, जिसका इनका पति फिर कृष्ण की जाया कौन है, राधा, राधा कांत के रूप में जाने जाते हैं। ब्रह्मा जी बड़े चरित्र तो बड़े बहु विचलित हुए और इनको भी इच्छा था कि राधारानी के चरण कमल के दर्शन करेंगे। ब्रह्मा जी ने कई दिनों से इच्छा पकड़ के थे, तो इसलिए उन्होंने फिर दोबारा तपस्या करने बैठ गए। इनको तपस्या करने लगे राधा श्याम सुंदर की तपस्या करके प्रसन्न किए, तो उन्होंने प्रकट होते ही ब्रह्मा जी कहते आप कृपा करके राधारानी को उन्होंने विनय किए कि आप ये विंध्याचल की पुत्री बन जाए तो फिर कृष्ण उसकी जामाता बनेंगे, तो अभी फिर मेरे वरदान सार्थक होगा कि महादेव विजयी जामाता इसकी मिल जाएगी उसको विंध्याचल। तो इस प्रकार राजाणी इसमें सहमत होती है। लेकिन गार्गी कहती कि देखो बुसवानु तो बुसवानु कितनी बात है, उनको अनाधिकार से उनकी माता पिता है किनकी, राधा रानी की। पूर्णवासी कहते अरे वो सब सुनो, थोड़ा धैर्य धारण करो, ठीक है बुसवानु वो कितना उनकी माता पिता ही है, लेकिन कीर्तिदा की गर्भ में जब राधा रानी आई तभी जिस प्रकार बलराम जी को जगमाया देवी ने देवकी की गर्भ से रोहिणी की गर्भ में स्थानांतरित की कृष्ण के निर्देशन में, उसी प्रकार कीर्तिदा की गर्भ से फिर उनको स्थानांतरित की जाती है किसी गर्भ में, विंध्याचल की पत्नी के गर्भ में। लेकिन विंध्याचल की पत्नी जब गर्भवती होती फिर जन्म जो राधा और चंद्रावली दोनों जब उसकी गर्भ से मैंने जन्म लेते हैं किसी गर्भ से, विंध्याचल की पत्नी गर्भ से। लेकिन उसी समय पुतना को भी निजुक्त करके रखी थी कंस, कंस ने एक रंगसा देवी का जोगमाया देवी से श्रवण की थी कि उसकी उसको मारने वाला जो लड़का कहीं ना कहीं जन्म हो चुका है, लेकिन साथ साथ इनको जोगमाया देवी ने यही भी कहे थे कि देखो मेरे से भी अधिक सुंदरी सौंदर्यशालिनी और माधुर्यशालिनी गुणशालिनी सब समस्त सभी और आठ विशेष शक्ति धरा पर भी अवतीर्ण हो चुकी है, उनमें से विशेष कितने राधा और चंद्रावली विशेष प्रसिद्ध है और वो दोनों में से भी राधिका सर्वथा अधिकार राधारणी सबसे श्रेष्ठ गुणवाली गुणवती है। फिर भी जो राधा चंद्रावली ये दोनों को जो शादी कर लेगा वो महादेव को विजय करने वाला होगा, इसको तीनों वर्ग में कोई विजय विजयी नहीं पराजय नहीं कर सकता, कम से कम बड़ा बहुत अच्छा बात है। तो फिर ये दोनों लड़की को मुझे शादी करना पड़ेगा, तो इसलिए कंस ने पुतना को कह दिया देखो जितनी मेल चाहिए जो बालक है बच्चे हैं जो बालक है उनको मार डालना और जो ज्वलिता ने जो बालिका है उनको जो मेरे पास लिया मैं इनसे देखभाल करूंगा, ये बड़े होंगे बड़े होने के बाद मैं इनको क्या करूंगा शादी कर लूंगा और इनमें से कोई ना कोई राधा चंद्रमले क्या चंद्रावली हो जाएगा वो होगा उसमें। लेकिन कंस ने पुतना ने पुतना कह दी कि लड़कियों में देखने के पकड़ लिया घूम रहे थे घूमते घूमते आकाश मार्ग में देखा कि विंध्याचल की जो पत्नी से जो जन्म दिए थे दोनों कन्या राधा उनके नाम मैंने संस्कार चल रहा है, उनके जन्म होने के बाद पुरोहित लोग ने यज्ञ करके इनके संस्कार चल रहा था जातकर्म संस्कार हो रहा था, उतना आकाश से गई और दोनों लड़की को पकड़े फिर ऊपर से हाहाकार मच गया, सभी लोग कहा हाहाकार करने लगे। तो विंध्याचल ने अपने पुरोहित को कहा कि ब्रह्म आपने भी थोड़ा ब्रह्म कर परिचय दो ऐसे मंत्र उच्चारण करो पुतना की जैसे शक्ति घास होने लगे वो जैसे नीचे गिर जाए फिर मैं दोनों पुत्री को प्राप्त करूं। तो पुतना तो ऊपर उठ गए थे और पुरोहित लोग ने जो मंत्र उच्चारण करने लगे पुतना के शरीर कंपने लगा है शरीर शक्ति घास होने लगे। तो ये लड़की उसके हाथ से गिर कर महाराष्ट्र की कहा कुंडी नगर में वहां पर पानी नदी में तो उसको भस्मत में लेकर पालन किए ऐसे बंधन करते हैं कुशल की 5 साल की उम्र तक तो वहां रहे लेकिन गोवर्धन में रहने वाला जो कि जो राम हो सकुन उसके साथ भगवान ने 28 दिन लड़ाई किया क्या नाम उसका जाम भगवान। तो उन्होंने फिर भगवान की जोगमाया के निर्देशन में फिर उनको वहां से लेकर फिर गज में पहुंचा, इसी प्रकार फिर वो चंद्रावली के रूप में प्रसिद्ध हुई और राधारानी को तो लेकर ऐसे एक हाथ में पकड़ के लाए लेकिन वो आकर फिर मूर्छित होकर ब्रज में ही गिर पड़ी कौन और पूर्णवासी कहती कि मैं उसके हाथ से उनको छुड़ा कर ये मुखड़ा को दे दी थी मुखड़ा जो कि उसकी सास थी किसकी सास वृषभानु की सास है कीर्तिदा की माता जी तो उनको दे दी थी ये कहा कि ये तुम्हारी लाल तुम्हारे लाली का लाली है वृषभानु की मनी उसको दे दो इसको पालन पालन करने का। इसी प्रकार थे राधा ने किसकी लड़की बन जाती है वृषभानु और कीर्तिदा की पुत्री बन जाती है। ऐसे ही राधा रानी के आविर्भाव के बारे में रूप गोस्वामी अपने ललित माधव जी के नाटक के प्रारंभ से वर्णन करते हैं। लेकिन ब्रज में जैसे विशेष रूप में प्रसिद्ध है कि ऐसा कहानी ब्रजवासी लोग ने और दूसरी कहानी कहते वो कहते कि नहीं वृषभानु बाबा ने जमुना में स्नान करने के लिए गए थे और स्नान करके जब उन्होंने सूर्य अपना जल तर्पण कर रहे थे वृषभानु भी सूर्यदेव के ही अवतार भी माने जाते हैं, ये कहते कि ये भी सूर्यदेव के अवतार है वृषभानु ये लेकिन वो जब सूर्य तक स्नान करके ही तर्पण करके ऐसे पूरे ध्यान थे हटा क्या उसमें उनके शरीर को स्पर्श कर रहा था, बार बार स्पर्श कर रहा था, तो उसको देखिए ध्यान बहुत सुंदर है, हजार दवा दवा से दृष्टि के सुंदर कमल के स्वर्ण कमल और स्वर्ण कमल के बीच में एक अंगुष्ठ प्रमाण की एक कन्या बहुत सुंदर कन्या पकड़ी की खेल रही है हाथ पैर लाते हुए श्री वृषभानंद की पुत्र कोई पुत्री नहीं थी, बड़े प्रसन्न होकर उनको है अपने हाथ में उठाकर फिर कमल के साथ उस पुत्री को लाकर अपने किसको अर्पण की पिता को अर्पण की। इसी प्रकार जब उनके मन में फिर उनके लालन पालन की इच्छा प्रकट हुई फिर वो राधारणी एक साथ साधारण बालक के बालिके के समान अपने स्वरूप को फिर वृद्धि करने का साधारण बालक के बालिके के समान उनके गोद में आई। इसकी यह दूसरा भी तीसरे कहानी जैसे अन्य पुराणों में भी दिखाई जाता कि राधा जो कि वृषभानंद के पिता की तो कोई पुत्री नहीं थी और इसलिए उन्हें बड़े दुखी थे, यही तपस्या करने पर भी व्रत आचरण करने पर भी उनके संतान नहीं हो रहा था। तभी कीर्तिदा ने उनके पूर्व उनके नाम भी पलावती भी कहा गई किसी किसी पुराणों में, तो उन्होंने अनुनय विनय करती कि वृषभानंद जी को कि आप कात्यायनी व्रत कीजिए, कात्यायनी जैसे गोपियां लोग भी कात्यायनी व्रत करते थे, कात्यायनी महामाये महाभगिनी अधीश्वरी नंद गोपो सुतन देवी पत्नी गुरु के महादेवी अधीश्वरी कुछ भी देने के लिए सब समर्था है। तो वृषभानंद की पत्नी जो कीर्तिमा कहे कि आप कात्यायन की उपासना की थी, कात्यायन देवी हो सकते तो प्रसन्न होकर तो हमको वरदान देंगे, तो वरदान देंगे तो आपको पुत्र प्राप्त हो सकती है। इसलिए जब हमें कात्यायन के कठोर प्रत्येक दिन जाकर जमुना स्नान करके ही जमुना किनारे कात्यायन की ध्यान करते हैं, कुछ सालों के बाद कात्यायन देवी प्रसन्न होकर प्रकट होकर लेकिन कहते सुनने की सुनने वाले से कहते कि देखो हरिनाम के उच्चारण किए बिना करना पवित्र नहीं होता है, तो इसलिए आप पहले किसी गुरु से हरिनाम को स्वीकार हरिनाम मंत्र स्वीकार करें, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरिनाम ग्रहण किए बिना काया शुद्धि नहीं होता है और दूसरे मंत्र क्या कैसे जप करने में योग्य बनोगे, इसलिए कात्यायन के निर्देशन में फिर वृषभानंद जी ने भ्रमण करते करते जमुना किनारे में कौसुमुनि के आश्रम में पधारते हैं और कौसुमुनि के पास में जाकर उनसे हरे कृष्ण महामंत्र से दीक्षा प्राप्त करते हैं। फिर उन्होंने जब इस हरे कृष्ण महामंत्र के कई सालों तक हजारों वर्षों तक से जप करते हैं तो उससे प्रसन्न होकर फिर कात्यायन देवी उनके सामने प्रकट होती है और इनको एक जब वृषभानंद जी की इच्छा को जानते हुए उन्होंने प्रदान करती है, क्या प्रदान करती एक बक्स, जिस बक्स का जो आकृति कैसे था डिंबाकृति है एक सुंदर गोल बक्स, लेकिन स्वर्ण बक्स स्वर्ण कमल के में बहुत इसकी जो ज्योति पूरे पिघले हुए सुना के समान पर झलक रहा था, सूर्य की किरण किरण का भी कांति उसके सामने सामने पराभव प्राप्त कर रहा था। ऐसे सुंदर बक्स के इनको देकर कहे कि इसी में ही तुम्हारे मनोविष्ट पूर्ण हो जाएगा, ये कहकर वो जो बक्स इनको दिए और कात्यायन देवी अंतर की अंतरित हो गए, उनको लाकर घर में रखकर जपना बक्स की जो जपना ले रहे थे समय आने पर उसी बक्स से ही कौन प्रकट हुई राधारण की प्राकृत्य। ऐसे ही राधारण के प्राकृत्य के बारे में कई कहानियां पुराण में भिन्न भिन्न स्थान पर वर्णन आता है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि जो भी है लेकिन अब राधारानी विशेष कीर्तिदा और वृषभानंद की पुत्री के रूप में जानी जाती है, जन्म से अंधा थी इनका आंख नहीं खुली इसके राधा जो गोलोक थे उन्होंने राधा में आने के लिए जब इनको बाध्य होना पड़ा तो उन्होंने ये शर्त रखी कि भगवान को कहते देखो मैं मत्स्य लोक में तो जाऊंगी लेकिन मैं मत्स्य लोक में किसी दूसरे पुरुष के मुख नहीं देखूंगी, इसलिए वो आंख बंद करके रखी। जब राधा के पास जन्म हुई वृषभानंद के पिता की पुत्री जन्म हुई खबर मिला तब जसोदा और नंदनी घर में पधारे लाली को देखने के लिए और तब जसोदा ने जसोदा कीर्तिदा परस्पर को आलिंगन किए नंद और वृषभानंद वार्तालाप में लग गए और तभी ही एक छोटे कृष्ण नीचे आए और ऐसे ही आस्ते आस्ते बढ़ते हुए राधारण के पास में गए, जब नीचे ही झूले में ऐसे और सज्जा पर सही हुई थी जैसे उनकी आंख की आंगुली लगाते ही राधारण समझ गई मैं कृष्ण प्रभु है, राख है। ऐसा ही कहा जाता कि राधा है, राधा नहीं के पहला दर्शन में किसको देखी हो, कृष्ण को ही दर्शन। हमारा उड़ीसा बांग्ला में बंगाल में अलग प्रकार की कहानी है, तो कहते कि नहीं यशोदा जी ने पहले कल गए तो जाकर कृष्ण को छोड़कर राधा रानी को उठाकर अपने गोद में ले लिया, तो ये जोर से रोने लगे कौन कृष्ण, यशोदा ने उनको भी गोद में ले लिया, एक गोद एक हाथ में राधा एक हाथ में कृष्ण, दोनों से दोनों सामने सामने आ गए दो बच्चे, तो राधा रानी तो आंधी की आंख नहीं खुल रही थी, कृष्ण ने ऐसे ही आंगुली लगाया उनको, ठीक है बच्चों को स्वाभाविक है एक दूसरे को स्पर्श करना, कृष्ण उनके शरीर को स्पर्श करते हैं आंख खुल करके किनको, तो इसी प्रकार उनकी जब देखी कि यार ये पूरे प्रसन्न हो गए तो समान हो और कितना कि हमारा लाली आंधी हम सोच रहे थे लेकिन अभी तो आंख खुल गई है तुम्हारे तुम्हारे कन्हैया को देखकर हमारा लाली का आंख, तो इसलिए दोनों परिवार में क्या बढ़ने लगा मित्रता बढ़ने लगा। इसी प्रकार आगे जो कथाएं आपको भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज सुनाएंगे, मुझे आविर्भाव में यहीं पर गाली को विश्राम देता हूँ।
अभी परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी का लेक्चर होगा, महाराज थोड़ी देर में आ रहे हैं सर, 5-2-3 मिनट में, तो आप कृपा करके बैठे रहिए, 10:15 से अभिषेक होगा। हरे कृष्ण राधे जय जय माधव जय राधे जय जय माधव जय तारुणी मंडल महिते गोकुल तारुणी गोकुल तारुणी मंडल महिते गोकुल तारुणी राधे जय जय माधव दैते दामोदर रति
वर्धन से दामोदर राती दामोदर राती वर्धन से दामोदर राती हरि निष्ठ वृंदाविपिन से हरि निष्ठ वृंद हरि निष्ठ वृंदाविपिन से हरि निष्ठ वृंद राधे जय जय माधव जय राधे राधे जय जय माधव कंठ विषभानु दाधि नव शशि लेखे विषभानु दाधि भानु दाधी नव शशि लेखे भानु दाधी ललिता सखी गुणा रमित विसाथे ललिता सखी गुणा ललिता सखी गुणा रमित विसाथे ललिता विराधे जय जय माधव कंठे राधे जय जय माधव कंठे करुणाकुरुमयी करुणा भरी करुणाकुरुमयी करुणा भरी करुणा सनक सनातन वर्णित चरिते सनक सनातन रूप सनातन वर्णित चरिते रूप सनातन राधे जय जय माधव चरिते राधे जय जय माधव कंठे करुणां कुरुमयी करुणा भरीते करुणां कुरुमयी करुणां कुरुमयी करुणा भरीते करुणां सनक सनातन वर्णित चरिते सनक सनातन सनक सनातन वर्णित चरिते सनक सनातन राधे जय जय माधव जयते राधे राधे जय जय माधव जयते
श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की श्री श्री कृष्ण बलराम जी की निताय गो सुंदर की समवेत भक्त वृंद की। तो आज सभी के लिए तो हम जैसे भक्तों के लिए नहीं पूरे ब्रह्मांड में समस्त लोक में जितने भक्त हैं सभी के लिए आज बड़े पावन और आह्लाद की तिथि है। क्यों? श्री राधा रानी के प्राकट्य तिथि है, आविर्भाव तिथि। तो प्रभुदानंद सरस्वती महाराज तो राधा जी के आविर्भाव के बारे में कुछ बताए, तो मैंने सोचा कि कुछ राधा रानी के परिचय बताए उनके तत्व के बारे में। और देखो प्रभुपाद जी ने लिखते हैं सृष्टि से लेकर के अद्यावधि ये दो चरित्र राधा और कृष्ण पूरे मनुष्य समाज के लिए एक पजल बन कर रहा है। आश्चर्य सचमुच है आश्चर्य। उनके तत्वों को अगर ठीक से कोई समझे तो इसमें देखा जाएगा सारे आश्चर्य सारे विरोधाभास सब कुछ उनमें है। तो राधा और कृष्ण बाकी भारतवर्ष में कई जगह में घूम करके आओ, अनेक मंदिर है तीर्थ स्थान है, कहीं तो मिलते नहीं, इस क्षेत्र में मिलते हैं। लेकिन यहाँ भी हम लोग जैसे भौतिक विचार वाले लोग देखते हैं आकर के अल्टर में राधा कृष्ण को देख करके बड़े सुंदर श्रृंगार करके राधा कृष्ण के जो अल्टर में देखते हैं कि कई लीला में राधा कृष्ण को देखते हैं फोटो में देखते हैं, तो हमारा मन में वही भाव जो जो हम है इसी प्रकार के भावना बन जाते हैं कि अरे ये तो जैसे कोई साधारण पुरुष स्त्री को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसा ही भावना आता है, उन्हें कितने बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। ये सब हमारा अज्ञानता के कारण है। शास्त्र कहते हैं कि राधा और कृष्ण एक है, एक ही है, दो नहीं। राधा कृष्ण एक आत्मा द्वि देहधरी अन्यन्य विलस्य रस आस्वादन करी। तो एक ही आत्मा है। आत्मा आप सब समझते होंगे क्या है, आप सब शरीर तो है नहीं ना, इस कर्म आकर तो इतने तो कम समझते होंगे। आप सब कौन है, हम सब आत्मा है ना, मानते हैं सब आत्मा है। जवाब दे, पता है आत्मा काला है कि गोरा है, मोटा है कि पतला है, कुछ पता है, लिक्विड है कि सॉलिड है, कुछ से नहीं पता। अब बोलते हैं हम आत्मा है तो क्या जानते, क्या पता, कितने अज्ञानता है, हम जो है वो भी नहीं जानते हैं तो उनको क्या जाने। लेकिन इतना तो जानते हैं कि हम आत्मा है, मुझे पता नहीं कि आत्मा कैसा है, लेकिन आत्मा अगर शरीर से निकल जाता है तो मेरा राम नाम सकते ये तो है ना, नहीं हमसे अभिन्न है, हम ही है, ये हमारा हाथ है, हम हाथ नहीं है, हमारा सर है, हम सर नहीं है, हम तो आत्मा है, आत्मा का ही शरीर है, शरीर के मालिक वो है। तो शास्त्र में कहा गया आत्मा तु राधिकाजस्य, कृष्ण के आत्मा कौन है, जब राधा रानी आत्मा है तो कृष्ण से अलग कैसे हो सकते, शरीर से आत्मा अलग होगा तो रहेगा शरीर, कितने सकते, तो एक ही है, एक आत्मा का एक शरीर होता है, लेकिन वो भगवान है। जो भी राधा रानी उनके आत्मा होते हुए भी किसी के साथ एक आत्मा लेकिन दो देह धारण करते हैं। क्यों दो रूप धारण करते हैं, क्योंकि रस आस्वादन करने के, आनंद उपभोग करने के लिए। ये बहुत साधारण बात है, हम सभी सुखी होना चाहते हैं, सभी आनंद भोग करना चाहते हैं, लेकिन सोच करके देखा जाए अगर दुनिया में केवल हम ही होंगे और कोई नहीं होंगे और आपको सारे ऐश्वर्य संपत्ति सब कुछ दिया गया तो खुश हो पाएंगे, लेने के लिए खुश हो जाएंगे, बाहर तो मिल जाएगा कोई नहीं मिली देखने के लिए, कभी कभी अपने नए वस्त्र पहन करके सेविंग सेविंग ड्रेसिंग पेंटिंग होकर बाहर निकलेंगे, कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखेगा नहीं, तो बेकार कोई देखते नहीं, क्या मतलब? तो इसे सद श्रृंगार का मतलब नहीं कोई दूसरा ना हो, तो आनंद प्राप्त करने के लिए एक से दूसरा व्यक्ति होना अति आवश्यकता है, नहीं तो हो ही नहीं सकता आनंद। कौन आपको बोलेगा? कौन आप ऐसे है करे कौन बताएगा? कोई तो बताएगा, तब तो जाकर वो आपका कुछ लगेगा वहां। तो इसलिए भगवान को भी आनंद प्राप्ति, यद्यपि आत्मा राम है, वो अपने आप में आत्मा का रमण करने वाले हैं, वही आत्मा को भी दूसरे रूप दे करके खड़ा करके वाले अपने आत्मा को, क्योंकि दो होना जरूरी है रस को प्राप्त करने के, रस अनुभव करने के। तो इसीलिए स्वयं अपने आत्मा को मूर्त रूप दे करके, उनको दूसरा शरीर दे करके उनके साथ रखे, तो ये राधा कृष्ण रस आस्वादन के लिए अलग होता है। राधा रानी भगवान के एक शक्ति है, भगवान का अनेक शक्ति है, कोई शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं हो सकता, वो एक ही होते हैं, लेकिन फिर भी अलग है। जैसे आग है, आग हो और आग जहां रहेगा लाइट में होगा ना नहीं, और गर्मी होगा ना नहीं, जो हीट एंड लाइट, जो गर्मी और आलोक, उसको आग से अलग किया जा सकता है, संभव है, लेकिन केवल गर्मी हो, आप कहेंगे कि आग जल रहा है नहीं, लेकिन गर्मी तो आग से ये अलग है, लेकिन जल्दी एक ही है। इसी प्रकार की वो दोनों एक होकर भी अलग है, शक्ति शक्तिमान एक है फिर भी अलग है। तो शक्ति है तो कितने शक्ति है? थोड़ा, ज्यादा, आधा, बोलते नहीं। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, कंप्लीट शक्ति, पूर्ण शक्ति है, और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। आप भी सब शक्तिमान है, उसके काम कर ही लेते हैं। तो जब शक्ति हम कहते हैं एनर्जी, तो उसका कोई रूप होता है क्या? शक्ति का रूप नहीं होता ना, ना शक्ति का रूप नहीं होता। शक्तिमान में शक्ति का परिचय प्राप्त होता है, शक्तिमान का रूप होता है, उसी से उनका परिचय होता है। तो साधारण जो शक्ति है तो उनका रूप कैसे हुआ, मूर्ति कैसे हुआ? तो कृष्ण के साथ उनका परिचय होना चाहिए, बात सही है। तो शक्ति का आपने मूर्ति नहीं होता, आपने रूप नहीं होता, लेकिन अगर शक्ति समुच्चा, संपूर्ण शक्ति का अधिष्ठात्री देवी बने, कंट्रोलर बने, तो कंट्रोलिंग डिटी के रूप में उनका मूर्ति होगा, मूर्ति होगा, क्योंकि सारे शक्ति के अधिष्ठात्री है। तो राधा रानी केवल शक्ति नहीं, शक्ति के अधिष्ठात्री देवी है। संपूर्ण चित शक्ति जिसको स्वरूप शक्ति कहते हैं, स्वरूप शक्ति कहने का मतलब वो शक्ति स्वरूप में ही रहता है, स्वरूप से अलग नहीं किया जा सकता। हमारे जो शक्ति ये बाहर से, जैसे कोई हम नया कपड़ा पहने, दुर्गंध होता था तो सेंट थोड़ा डाल दिया, अजब जाते महकार, और कितने सेंट डाल। तो ये जो सुगंधी जो शक्ति है तो हमारा है क्या? नहीं, वो तो डाला गया बाहर से, आगंतुक शक्ति, वो थोड़ी देर में चला जाएगा, बट अपना होता खोद का वो कभी जाएगा नहीं, जा नहीं सकता। एक लोहे के खंड है, लोहा है, वो हाथ में पकड़े उसको आग में डाल दो, दो घंटे के बाद वो लोहा रहेगा ना, क्या बन जाएगा? आग ही बन जाएगा, कहीं भी डालो जला देगा उसको, आग बन जाएगा। लेकिन ये लोहे का शक्ति नहीं है, वो आग से आया हुआ शक्ति लोहे में आ गया, ये अपना स्वरूप शक्ति नहीं है। तो इसलिए जो बाहर से आया वो तो जाएगा, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, फिर भी काम नहीं करेगा, उनका स्वरूप का होता कोई जा नहीं सकता। तो इसी प्रकार कृष्ण के तीन प्रकार के शक्ति होता है, अनेक शक्ति के तीन विभाग किया गया, एक स्वरूप शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति और एक तटस्था शक्ति। एक स्वरूप जो आप में है, एक बाहर में है, और एक बीच में, ना तो स्वरूप तो जो बाहर का है और बीच का है उसको तो छोड़िए, जो स्वरूप में रहता है उन्हीं में ही रहता है, उनसे अलग कभी किया नहीं जा सकता। वो शक्ति भी तीन प्रकार के है, इसको कहा गया सत शक्ति, चित शक्ति और ज्ञान और आनंद शक्ति। तो वो तीनों भी अनन्य एक साथ में रहते हैं, कभी अलग नहीं हो सकते, और उनमें भी उत्तरोत्तर एक से एक सृष्टि है। सत से सम्मित सांदिनी शक्ति, चित से सम्मित शक्ति और आनंद से भागिनी शक्ति, एक दूसरे से बढ़कर के भागिनी शक्ति, तीनों शक्ति का सृष्टि है। सारे शक्ति के अधिष्ठात्मक अधिकारिणी होनी है, अगर भागिनी है तो इसमें सम्मित और संदिनी दोनों भी रहती है। तो इसी प्रकार भगवान के जितने स्वरूप में शक्ति है, समस्त शक्ति का डी कंट्रोलिंग ड्यूटी पूर्ण शक्ति, तो और उन्हीं की आत्मा है, उन्हीं के है। जब अधिष्ठात्री देवी के रूप में अलग मूर्ति धारण की, इसलिए मूर्ति धारण की क्योंकि भगवान की अल्हादिनी शक्ति है, जिनके द्वारा भगवान कृष्ण स्वयं अल्हादित होते हैं, अल्लाह को प्राप्त करते हैं और भक्त को भी अल्लाह देते हैं, पोषण करते हैं। इस अल्हादिनी शक्ति के द्वारा भगवान स्वयं आनंद को प्राप्त होते हैं और भक्त को भी आनंद देकर के पोषण करते हैं, यही शक्ति के द्वारा। तो वो जब अलग होकर के भगवान के सामने रहती है तो उनको क्या रिलेशन है भगवान के साथ, तो आचार्य लोग कहते हैं गोविंद नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। एक एक शब्द को ध्यान देते हैं, कहते हैं कि राधारण का परिचय कौन है, गोविंद नंदिनी राधा। राधा कौन है, गोविंद नंदिनी, गोविंद को आनंद देने वाली है। कैसे आनंद देगी, गोविंद के आनंद देने के लिए जो जो आवश्यकता है, राधा रानी आनंद देने के लिए अपने रूप के द्वारा, अपने गुण के द्वारा, अपने वस्त्र आभूषण अलंकार के सजावट श्रृंगार के द्वारा, अपने चाली बोली अंग भंगी के द्वारा, अपने लीला विलास वैचित्र वैदक्ति आदि के द्वारा हर प्रकार से कृष्ण को प्रसन्न करे, उनको आनंद दे, हमेशा उनको आनंदित करे। इसलिए गोविंद को आनंद हर प्रकार से करने के कारण उनका नाम हुआ गोविंद नंदिनी, गोविंद को आनंद प्रदायिनी। एक परिचय तो हुआ, हमेशा उन्हीं के द्वारा वो आनंदित होते हैं और कहीं से आनंद होना नहीं, सब प्रकार से व्यवस्था उन्हीं में है कंप्लीट, वही उनको हर प्रकार से आनंदित करते हैं गोविंद नंदिनी। दूसरे गोविंद मोहिनी केवल आनंद नहीं करती है, उनको मोहित भी करती है। मोहित कैसा, मोहित का आप समझते, मोहित अर्थ क्या होता है, इसको मोहित कहते ना, मतलब इसको अट्रैक्ट नहीं, अट्रैक्ट करना पूरा हो जाए मोहित का, हाँ पूरे बस में कर देना समस्या, आप हाथ हिलाए तो हाथ ही हाथ हिलाए तो आपको बिल्कुल बस में कर देना, मोहित करके सम्मोहन कर दिया। ऐसे सम्मोहन कोई मैजिक करके नहीं करती है, आपने सौंदर्य माधुर्य रूप गुण के द्वारा उनको मोहित कर दी है। इस प्रकार से आलाप विलाप श्रृंगार भाव भाव क्रिया मुद्रा रूप इस प्रकार प्रकट करती है कि कृष्ण कंप्लीट उनके हो जाते हैं, इतने हद तक हो जाते हैं मोहित कि बाकी सब कुछ तो देना उनके हो जाना ये बात नहीं, आत्म पर्यंत विसर्जन करके राधा को प्रसन्न करना चाहते हैं कृष्ण। ऐसे एक बार घटना हुआ वृंदावन में, रास में राधा रानी का नाम राधा इसलिए पड़ा क्योंकि गोलक वृंदावन में भगवान आनंदित होने के लिए रास मंडल में जाकर बैठे, रास रजनी में सोचते थे किस प्रकार से मैं विशेष आनंद रस को अनुभव करूं, तो तुरंत अपने मन जान करके राधा जी प्रकट हो गई रास स्थली में, प्रकट हो रहे थी भगवानी थी, दौड़ने लगी, किसने दौड़ी, फूल लाऊंगी पूजा लाऊंगी ये लाऊंगी भगवान को प्रसन्न आनंद देने के लिए, भगवान को आनंद विधान करने के लिए, आनंदित करने के लिए, सारे समन जुटाने के लिए, सारे व्यवस्था करने के लिए दौड़ने लगी, प्रकट होकर के दौड़ी। इसलिए रास मंडल में प्रकट होकर के भावित होने लगी राधा, इसलिए उनका नाम पड़ा। राम भावित होने लगी, दौड़ने लगी, पूरे प्रयास एक ही प्रोजेक्ट राधा रानी का है, जैसे तैसे किसी भी प्रकार से कृष्ण को प्रसन्न किया जाए, गाय के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, किसी प्रकार से एक ही प्रोजेक्ट होगा, इसलिए राधा हर प्रकार। तो उन्होंने ऐसे रास रजनी में जब कृष्ण अनेक जो गोपियां हैं, गोपीगण हैं, वो सब कुछ दूसरे नहीं, वो सब राधा जी की दृष्टि है, क्योंकि भगवान बोले एक में मजा नहीं आ रहा है, बोले यार बन जाओ, करोड़ बन जाओ, मैं बना देता हूँ अपने आप व्यवस्था करके, उनमें सब कुछ है, उन्होंने व्यवस्था की। भगवान सबके साथ एक एक होकर जब नाचने लगे राधा रानी, बोले नॉर्मल है, तो मानी नहीं हो गई। अभी मानी नहीं, राधा रानी का एक बहुत बड़ा गुण है, रूठती है बहुत, दिन में कई बार मान कर जाती है। अरे भाई वो तो कृष्ण को बहुत परेशान होना पड़ता है, बहुत गिड़गिड़ाना पड़ता है उनको बुझाने के लिए, समझाने के लिए, बुझाने के लिए। पत्नी नहीं है कभी झुंडा आपको कहा तो हाथ जोड़ के रहना पड़ेगा, आप इतने रुक जाते बात बात में ऐसे क्यों। राधा रानी के प्रेम विशुद्ध प्रेम है, निर्मल सरल है, लेकिन इसके अंदर एक कठोरता, एक कुटिलता, एक वक्रता, बाल्य भाव कैसे आता है विचार करने से बड़ा गड़बड़ लगता है। विरुद्ध भाव है, इतने सरल निर्मल विशुद्ध प्रेम है, इसमें स्वार्थ का, काम का गंध लेती नहीं, तो इसमें ये कुटिलता कहां से आ गया, ये कठोरता कहां से आ गया, ये काम्य भाव कैसे आ गया, क्योंकि ये विशुद्ध प्रेम है। इसलिए विशुद्ध प्रेम का ही लक्षण होता है, प्रेम का वैचित्र होता है, मान रोष प्रण ऐसे उसका भाव होता है। कोई व्यक्ति अगर आप को अपना नहीं मानेगा तो आपका ऊपर कोई गुस्सा नहीं करेगा, गुस्सा तभी करेगा आपसे, गुस्सा मतलब गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं, गुस्सा क्या बोलते हैं, मान करना नहीं, द्वेष भी नहीं, अभिमान, अभिमान कर लेना, रुठ जाना आपसे। क्यों रुठ जाएगा, क्योंकि वो चाहती थी आप ऐसा करना चाहिए, आप अगर ऐसा नहीं किए तो वो ऐसे क्यों नहीं करते। क्योंकि राधा रानी ही बाम्य भाग है कि राधा रानी हमेशा सोचती थी कृष्ण तो मेरे हैं, वो तो मेरे हैं, तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं किए क्यों नहीं किए, गुरु के चंद्रावली वो सोचती थी मैं तो कृष्ण की हूँ, मैं तो कृष्ण की हूँ, मैं तो उनके चरण की दासी हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, वो मुझे मारे कुछ भी करे, उनके मर्जी मैं कैसे रुक सकती हूँ, मेरा कोई पावर ही नहीं है उनकी मर्जी। जो अपने को दासी भाव रखेगा मैं कृष्ण की हूँ ऐसे मानेगा, वो कभी मान नहीं कर सकता, मान नहीं, माने नहीं हो सकता, हो नहीं सकता, बनावट मान नहीं कर सकती, मान तो वो करेगी जो सचिकारी तो मेरे हैं, मेरे होकर तो मेरे से, तो ये भाव है, ये प्रेम का और उच्च स्तरीय भाव। तो राधा रानी मान कर गई करके अब जमुना पार करके चलते जा करके उस तरफ जाकर बैठी, चली तो गई लेकिन उन्हीं का तो मन बुद्धि प्राण किसी के लिए है, सब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, अब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए रुठ गई, रुठ करके अलग हो गया, बोलते अलग हो गया, वो क्या करते हैं, हम जाकर के दुखी होने लगी, रोने लगी, अलग भी हो गई उनसे, अलग होकर क्यों अलग हुई, रो रही है, गजब की बात है, क्यों आकर छोड़ के चले गए, नहीं तो दूसरे के साथ क्यों हो मेरे सामने, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी तो चुप बैठो, अलग हो गए, नहीं चुप भी नहीं बैठ सकते। अब रोने लगी, इतने रोने लगी, इतने रोने लगी कि क्या बता, जमुना में बाढ़ आ गई, भर गया सारे तालाब वाला, अभी है एक मान सरोवर करके जमुना की, मान के कारण इतने रोने लगे तालाब भर गया पानी, मान के सरोवर है मानी इतनी हो गई, शीशे के रो रहे थे। भगवान को देखे कि राधा जी नहीं हो तो रास करी है, उनके बिना रास कैसा, वो बाहर निकल गए सबसे अलग होकर निकल कर ढूंढते 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 परेशान होकर के देखिए जमुना जी पानी, बोले यहाँ से पानी आ रहे पता ला करके वो शिशकने का आवाज आया, बोले कोई रो रही हो, पता लगा ले तो वही होंगे रो रही होंगे, मेरे से अलग होकर के कुछ रो रही होंगे। जाके पहुंच गए, पहुंच गए तो बिल्कुल देखे कृष्ण आ गए, वो रोने लगे। जो मान करती है ना, जिनके ऊपर मान करते हो मनाने के लिए आते तो देखना उनका फिर उनका चक्कर और बढ़ता है, जितना भी करना है वो मन करेंगे, मन करके बैठी। तो भगवान ने उनको रिझाने के लिए हर प्रकार के प्रयास किए, हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाए, जो प्रकार के किए वो मान जाओ, जो भी करो काम पकड़ता हूँ नाक रगड़ता हूँ नहीं माने। यहाँ तक हो गया, भगवान ने बोले चलो मैं कंप्लीट पूर्ण शरणागत, मेरे पास तो कुछ है नहीं, यही मोहन वंशी है जिनके द्वारा त्रिभुवन को नचाता हूँ मैंने, ये वंशी आपके दे दी है, वंशी उठा करके आपने वासुरी को राधा जी के चरण में धर दिए, कभी नहीं आपने मोर मुकुट उठा करके उनके चरण में धर दिए, वही तो दोनों को उनके पास था, कपड़ा तो पहनते नहीं, एक उत्तरी एक पश्चिमी पहनते हैं, वो सब निकाल करके धर दिए राधा जी के चरण में, कभी नहीं मानी आपने कंप्लीट काय सहित साष्टांग प्रणिपात करके चरण पकड़ कर गिर पड़े रो रो करके, बोले आप स्मरागरण खंडन मम शिरसी मंडन दही पद पलब मुदारण, आपके चरण को मेरे सर में धर दो अब तो खुश हो जाओ, यहाँ तक जा सकते हैं। ये लीला को देख करके जयदेव गोस्वामी बोले मैं कैसे लिख सकता हूँ, भगवान साक्षात त्रिलोकेश्वर है, सर्वेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, परात्पर पुरुष है, वो एक सामान्य उनके शक्ति स्त्री के सामने इतने कैसी लिख सकता हूँ उसको, उनका लोग मुझे क्या कहेंगे, ये क्या लिख दिया, उनका कलम नहीं चला, वो देख रहे थे आंखों में कहा कि इसे कृष्ण कर रहे हैं लिख नहीं पा रहे, तो कृष्ण जयदेव बनकर का आकर लिखना पड़ा उनको, नहीं लिख सकते लिखना। तो इसमें पता चलता है कि राधा जी के द्वारा कितने कृष्ण मोहित है, आपने आपको पूर्ण समर्पण करके उनके चरण को अपने सर में धारण करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, तो कितने सम्मोहन करके रखी थी राधा, किसने सम्मोहन की थी, उनके पास था आपने रूप, उनके गुण, उनके अंग भंगी व्यवहार आप सही था, इसी के द्वारा इतने सम्मोहित करके रखी थी कि उनका नाम पड़ गया गोविंदा मोहिनी, गोविंदा मोहिनी राधा, इतने संत और उनको विशेषण देते हैं गोविंद सर्वस्व राम, केवल गोविंद नंदिनी नहीं, गोविंद मोहिनी नहीं, गोविंद सर्वस्व। सर्वस्व शब्द का क्या अर्थ है, सब कुछ, स्वमतोधन, सब सब आपका जो कुछ है, ऐसे ऐसे सोचिए हम सोच सकते हैं, हमारे पास तो सब कुछ नहीं है, सोचिए सोचने में कोई पैसा नहीं लगता, मन में विचार कीजिए, बैठे बैठे दिन में सपने देखिए अभी भी कि अभी तक मैं जितने संपत्ति के बारे में जाना हूँ, जितने प्राचुर्य सौंदर्य संपत्ति के बारे में जाना हूँ और आगे जितने जानूंगा सुना हूँ, सब कुछ मुझे मिल गया, सब मिल गया, पूरे विश्व की संपत्ति, सुंदरता, धन, पोस्ट पोजिशन, सब मिल गया, ज्ञान सब मिल गया, सड़े सत्य सब मुझे मिल गया, सब मिल गया आपको, आप कितने आनंदित हो गए, अभी बैठे बैठे सब मिल गया, जितने आप सोचे थे उससे ज्यादा मिल गया, कितने आनंद होंगे, होंगे ना नहीं, अरे मन में आनंद होने पैसा थोड़ी लगता, थोड़ा आनंद हो जाओ क्या फर्क पड़ता है, कोई इन्वेस्टमेंट तो करना नहीं पड़ता, फ्री में होना पड़ता है उसमें क्या, तो आनंद तो हो जाएगा ना, तो सर्वस्व मिल गया मुझे, जो जो मैं सोचा था उससे परे मुझे प्राप्त हो गया, अगर सारे खो गया तो जो था वो भी चला गया, तो जो सपना देखा था वो तो गया, जो आपने सचमुच था वो भी आपके रूप जौवन धन मान पोस्ट पोजिशन कपड़ा लता सब गया, कितने दुख होगा, सब वस्तु चला गया निष्प्रांत। ठीक इसी प्रकार राधा रानी के संग प्राप्त करके कृष्ण जितने सर्वस्व प्राप्त हैं जितने खुशी उनसे करोड़ गुना खुशी हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग तो हिसाब नहीं है, कितने बुद्धि है क्या जानेंगे, इससे करोड़ गुना आनंद कृष्ण प्राप्त करते हैं। और राधा रानी से विरह होकर के हमारे से सर्वस्व चला जाने से जितने दुखी होते हैं करोड़ गुना ज्यादा दुखी हो जाते हैं। इसी प्रकार से सोचिए, इसीलिए राधा रानी का नाम है गोविंद सर्वस्व, उनके सर्वस्व है, इस प्रकार से सुनना होगा। और क्या है, भगवान कृष्ण के असमर्थ सौंदर्य माधुर्य सामर्थ्य सब कुछ है उनका, भगवान की इतनी सुंदरता इतनी आकर्षकता है कि खुद कृष्ण को ही आकर्षित करता है, बाकी दूसरे की बात ही छोड़ो, संसार में कोई नहीं जो कृष्ण से आकर्षित ना हो जाए, अनंत माधुर्य अनंत आकर्षण अनंत सौंदर्य उनके पास है। और इनके द्वारा स्वयं आनंदित होते हैं, आस्वादन करते हैं और दूसरे भक्त को भी आनंदित करते हैं, पोषण करते हैं। उनका जो आनंद स्वरूपत्व रस स्वरूपत्व जिनके द्वारा वो लीला करते हैं, लीला रस का आस्वादन करते हैं कराते हैं, लीला पुरुषोत्तमत्व, ये सारे डिग्री राधा रानी के बिना निरर्थक है, कुछ ध्यान। और लाइट खुल रहा है, करंट ही नहीं है, पावर गया, ऐसे ही सारे भक्त वात्सल्य गुण लीला पुरुषोत्तमत्व और सौंदर्य माधुर्य असमर्थ समर्थत्व आनंदमयत्व जो भी कुछ है सब कुछ से ये पावर कनेक्ट है, कभी ये अलग हो जा सकते, केवल उन्हीं के साथ है सब उनके सारे डिग्री सारे पोस्ट कामयाबी होंगे, तो इसीलिए उनको गोविंद सर्वस्व कहा गया। तो वो गए तो सारे खत्म, करंट गया, आप करंट से लाइट में मतलब 20 रुपए का बल्ब है कुछ नहीं, तो इसलिए राधा रानी है भगवान के सर्वस्व। तो इसी को मैं कहने का ये इसलिए कहता हूँ कि आप जब राधा कृष्ण को अर्थ में देखते हैं ये मत सोचिए कि उनकी गाल फूल है, ये भावना कदाचित मत लाइए, उनका स्थिति की समझिए क्या है, क्या गोविंद सर्वस्व। और क्या न सर्वकांता शिरोमणि, जितने कांता है, और कांता क्यों कहा गया, हम कभी कभी अपने को कांत मानते हैं, हीरो मानते हैं कुछ वक्त तक थोड़े बहुत, तो जो भी मानते हैं आपके हीरोपन कांता के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो जितने प्रकार की पूरे संसार में कांताएं हैं, ये थर्ड क्लास भौतिक कांता के बेकार मेकअप करके होते हैं, असली सुंदरता हीरे के पास, उसके ऊपर देवी देवलोक गंधर्व लोक अप्सरा ऊपर ऊपर जाइए पूरा वैकुंठ लोक पर्यंत, मतलब वैकुंठ के लक्ष्मीगण द्वारका के महिषीगण ब्रज के गोपीगण ये सब अलग अलग प्रकार कांता है, समस्त कांताओं के सिरमौर शिरोमणि उन्हीं के वजह से सब कांता पोष पाए हैं, उन्हीं से बने हैं, वो ना रहे कोई कांता बने कैसे, ना कोई लक्ष्मी बने ना कोई महिषी बने ना कोई उन्हीं के वजह से उन्हीं के शक्ति, इसलिए सर्वकांता शिरोमणि ये राधा जी की छोटी सी परिचय है। आगे क्या बताते हैं इसी को देख करके गौतमीय तंत्र से पोषण करने के लिए वो कहते हैं राधा जी के बारे में, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मी मई सर्व कांति सम्मोहिनी परा, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, उसको समझिए राधा रानी के परिचय में गोतिम तंत्र में भरत गोतिम तंत्र में कहा है कि राधा रानी कौन है ना, देवी सबसे पहले देवी, देवी शब्द को अगर आप अभिधान खोल करके उसका अर्थ देखेंगे बहुत अर्थ है उसका, देवी शब्द का दिव धातु से अनेक अर्थ निकलता है, तो गोस्वामी ने उसे चार पांच अर्थ लिए हैं, देवी शब्द का अर्थ होगा, अलग अलग शब्द के अर्थ में जाएंगे। देवी शब्द को बोलते हैं देवी कही द्योत्यमाना परमा सुंदरी किंबा कृष्ण प्रजा क्रीड़ार बसती नागरी। देवी शब्द का अर्थ बोलते हैं, देवी शब्द का इमीडिएट एक अर्थ है द्योत्यमाना। द्योत्यमाना तो चमकदार, जिससे तेज निकल, तेजस्वी, तेजमयी, तेजमयी, बिल्कुल तेज निकलता है जिसमें, इनको कहते देवी द्योत्यमाना। तो राधारानी से उनके शरीर से और तेजस्विनी तेज निकल रही, ज्योति निकल रही, इसलिए उनको देवी कहते हैं। और इस ज्योति के कारण, इस तेज के कारण वो सबको आकर्षण किया है, यहाँ तक कृष्ण को भी आकर्षण किया देवी। और देवी का एक दूसरा अर्थ है द्योत्यमाना परमा सुंदरी, सुंदरता के जो कहते हैं क्या कंप्लीट जो कहते हैं जो हो सकता है दी सुंदरता, परमा सुंदरी, परम चरम सुंदरी, इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। तेजस्विनी है, परम सुंदरी है, और ये तो देवी शब्द का साधारण अर्थ हुआ। द्योत्यमाना परम सुंदरी भी है, और देवी शब्द का अर्थ है किंबा कृष्ण पूजा क्रीड़ार बसती नगरी। देवी शब्द का एक अर्थ पूजा भी होता है, देवी शब्द का एक अर्थ भी क्रीड़ा होता है, देवी शब्द का एक अर्थ बसती भी होता है, देवी शब्द का एक अर्थ नगर भी होता है। ये सब भी देवी जब कहा गया राधारानी की दृष्टि उनके साथ घटेगा, उसको कहते हैं कि कृष्ण पूजा। पूजा माने पूजा होता है क्या है, व्हाट इज पूजा, पूजा क्या है, करेक्ट, किसी को सम्मान करने का एक जो कार्यक्रम है, जो कार्य है उसको कहते हैं पूजा। पूजा के द्वारा किसी को सम्मानित किया जाता है, भगवान को पूजा करते हैं, आरती करते हैं, मालूम है उनको सम्मान करते हैं, किसी को पूजा करते हैं उनको विशेष सम्मान करते हैं, विशेष सम्मान एक आयत का तरीका उसको पूजा कहते हैं। तो कृष्ण को विशेष सम्मान करने का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम का मुख्य कर्ता मतलब पूजा अगर करना हो तो केवल पूजारी होने से पूजा थोड़ी हो जाएगा, केवल जनेऊ पहन करके तिलक करके पूजारी बन के आ गया सेकंड इनिशिएटेड तो पूजा थोड़ी हो पाएगा। क्या चाहिए, अरे घंटी चाहिए, शंख चाहिए, आचमन पात्री चाहिए, बाकी माला फूल सुख उपकरण चाहिए ना, बिना सामग्री में पूजा कुछ करेंगे। तो राधा रानी में पूजा के लिए जावतीय आवश्यक सामग्री सब मौजूद है, ऑल इन वन, उन्हीं में सब कुछ, सर्व सामग्री उनमें है जो कृष्ण के सम्मान के लिए पूजा के लिए आवश्यक है, सब कुछ उसी में है, उन्हीं में, और उन्हीं की तरफ पूजा कहीं इधर उधर नहीं। किसकी पूजा, मैं कृष्ण की पूजा, कृष्ण की पूजा के लिए विशेष करके जो जो आवश्यकता है पूजक और पूजा के द्रव्य और पूजा के आदान विधान सब नीति नियम सब कुछ कंप्लीट उनमें है, उनके बिना हो नहीं, इसीलिए पूजा। क्रीड़ा कोई आनंद पाने के लिए केवल सम्मान कर दें, प्रणाम दो चार बार ठोक दें तो आनंद थोड़ी हो जाएगा, खाने नहीं देंगे, खाने भी दे दिए, पूजा के अंदर भोग लगाना नैवेद्य भी है, लेकिन केवल खा पी करके कोई आनंद नहीं होता, थोड़ा घूमेगा खेलेगा तब तो है ना, खेलना भी एक आनंद प्राप्ति का उपाय है ना, नहीं कोई ना खेले, कोई बूढ़ा भी किस प्रकार खेल करते, बड़े बड़े ताश भी खेलते हैं, कभी शरीर है तो कभी और कुछ खेल, खेलना एक आनंद का प्राप्ति का एक उपाय है, तो आनंदित नहीं हो सकते किसी प्रकार खेले, सो सो करके, बैठ बैठ करके, चल चल करके, दौड़ करके, किसी प्रकार से खेलना तो आवश्यकता है, ये आनंद प्राप्त का एक साधन है। तो कृष्ण जब हर प्रकार से आनंदित होना चाहते हो तो वो क्रीड़ा करेंगे ना, तो क्रीड़ा करने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, प्ले फील्ड चाहिए पहले, जहाँ खेल करेंगे खेल के मैदान चाहिए, और खेल के सामग्री चाहिए, खेल खिलवाड़ और आदमी चाहिए साथी जिसके साथ खेल करें, रेफरी चाहिए देखने के लिए, और प्राइज भी चाहिए कि खेला तो हम वहां बाहर ताली बजाने वाले दर्शक भी चाहिए, नहीं तो खेल मजा भी नहीं आएगा। तो ये सारे स्टेडियम गैलरी और दर्शक वृंद और खेल के आइटम खेल के नियम विधान सब कुछ ऑल इन वन, इसीलिए क्रीड़ा भी राधा रानी है। कृष्ण आनंद प्राप्त चाहे खेल क्रीड़ा करने के लिए कहीं जाना नहीं है, इसीलिए केवल राधा रमण है। राधिका में रमण करे संपूर्ण जगत के सर्व प्रकार की क्रीड़ा संपादित हो जाए, कहीं दर्शक के लिए फूल गैलरी वही बना देगी। सारे जो भी आवश्यकता सब कुछ क्रीड़ा के लिए उन्हीं में है। तो पूजा क्रीड़ा किसके क्रीड़ा? कृष्ण की क्रीड़ा के लिए, बाकी किसी के नहीं, बाकी किसी के लिए नहीं, केवल कृष्ण की क्रीड़ा के लिए समस्त आवश्यक द्रव्य सब कुछ उन्हीं है। पूजा क्रीड़ा वसती, अरे खाएंगे पूजेंगे खेलेंगे लोग कहाँ टिकेंगे, घर का अपना कोई एड्रेस ही नहीं, कहाँ बैठे को बसती तो होना चाहिए। बसती शब्द का अर्थ में गांव मानते हैं, कोई गांव उनका है, किस गांव से आया है तो कोई गांव होना चाहिए, ब्रज गांव है तो ये ब्रज जो है ब्रजस्थरी वही है, ब्रज को प्रकट किए कृष्ण यहाँ रहेंगे तो ये गांव उन्हीं का है, वही ब्रजाधित है। तो ब्रजस्थरी बन करके बसती बने, कृष्ण जहाँ पर वास करे, केवल वास करने में थोड़ी हो जाएगा, अभी गर्मी लगता है, एसी भी हो कूलर भी हो फैन भी हो ये सब नहीं हो, ये कुछ भी था नहीं, कोई रह करके आलम चावर करते रहे और स्नान दान बाकी सबके व्यवस्था रहे बस्ती में, है ना, पूर्ण बस्ती की व्यवस्था हो, जैसे हम आजकल चाहते हैं आटा बाथरूम ये हो सब, उससे भी और कई 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 गुना व्यवस्था सब कंप्लीट करके रखे गाँव में, नेचुरल परिवेश सब कुछ नेचर के साथ इको फ्रेंडली सब कुछ व्यवस्था करके रखे बस्ती, उसमें वो भी सब कर रही। तो बोले बस्ती नहीं फिर नगरी क्यों बताए, क्योंकि गांव में सब चीज मिलता नहीं, रोड भी ठीक नहीं होता, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, फोन भी नहीं काम करता, अब बीमारी हो गया डॉक्टर पास जाओ तो है ही नहीं दुकान में मेडिसिन, गाँव में सब कुछ मिलता, नगरी मतलब नगर है ना सिटी है, सिटी में सब कुछ अवेलेबल है, पूजा के लिए जो द्रव्य चाहिए नहीं तो वो खरीद के ले आओ, फल नहीं मिलता फल मिल जाएगा, वो मिल जाएगा जो चाहे सब मिल जाएगा, यहाँ तो समय कुछ मिलता नहीं गाँव में, गाड़ी घोड़ा रोड सड़क कुछ नहीं है, तो इसीलिए सब द्रव्य जो जो चाहिए इमीडिएट सब प्राप्त होने के लिए केवल गांव नहीं रखे बोले नगर सिटी बन गए उनके लिए, सिटी लाइफ सिटी के नगरी, नगर में सब प्रकार के सुव्यवस्था है, रोड है लाइट है सिक्योरिटी है दुकान बगट डी मॉल है, वह एक एक दुकान में सब कुछ प्राप्त हो जाए, सब फैसिलिटी संपूर्ण प्रकार के सुविधा को प्रदान फैसिलिटी करने के लिए राधारानी नगरी बन गई सिटी बन गई कृष्ण के लिए, कहीं नहीं जाना पड़ेगा केवल राधा रमन राधा रमन राधा जी में रमन करे, वही सिटी है वही विलेज है वही प्लेग्राउंड है वही पूजा है वही क्या नहीं, तो इसलिए राधा ये तो केवल देवी शब्द का अर्थ मैंने किया। इस श्लोक में क्या कहा, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, समय कम है तो देवी शब्द के बाद एक शब्द कहा गया राधारानी के विशेषण के लिए कृष्णमयी, राधारानी कैसे है कृष्णमयी है, कृष्णमय स्त्रीलिंग में कृष्णमयी, माया एक प्रत्यय होता है वो तो कब यूज होता है, जैसे ये बड़ा महल फूल काट भर जाएंगे आप बोलेंगे लोकमय है, उसका अर्थ क्या हुआ लोग ही लोग हैं और कुछ है ही नहीं, जहां देखता हूं लोग जैसे कहते हैं बनिया है ना पूरी जलमय, जलमय कहने का अर्थ है जल ही जल है, जल के अलावा और कुछ है ही नहीं केवल जल ही है, ठीक इसी प्रकार कृष्णमय कहने से कृष्ण ही कृष्ण कृष्ण के अलावा और कुछ है ही नहीं, तो राधा रानी में आपाद मस्तक नक्ष शिक्षक क्या है कृष्ण ही कृष्ण है कृष्णमय है श्रीलिंग में कृष्णमयी है, कृष्ण के अलावा और कुछ है ही नहीं कृष्णमयी, कृष्णमयी की गोस्वामी अर्थ और एक अर्थ प्रकार से करते हैं, बोलते हैं कृष्णमयी कृष्ण जार भीतरे बाहिरे, बोलते कृष्णमयी शब्द का अर्थ है कृष्ण जिसका अंदर भी है कृष्ण जिसका बाहर है, कृष्णमयी कृष्ण जार भीतरे बाहिरे, जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे, देखिए कृष्णमय का अर्थ करते हैं, कृष्णमय का अर्थ क्या है ना, कृष्ण जिनका अंदर भी है, कृष्ण जिनका बाहर भी है। अंदर कृष्ण कैसे है बोलते, कभी कभी राधा जी अगर चक्षु मुद्रित कर दी, आंख बंद कर दी, आंख बंद कर दी तो स्वप्न में कृष्ण ही आएंगे। अगर स्वप्न तो गाढ़ निद्रा में जाने के बाद स्वप्न होता, स्वप्न नहीं हुआ, ऐसे आंख बंद कर दी तो चिंतन में कृष्ण ही, सोच में कृष्ण ही है। आंख खोली जहां आंख पड़ा कृष्ण ही, किसी को भी देखा, पेड़ पौधा लता पता पशु पक्षी सब, और कुछ नहीं, कृष्ण 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 ही दिखाई पड़े। समझते हैं दशा, आंख बंद करे तो उन्हीं के विचार, उन्हीं के सपना, उन्हीं के चिंता, आंख खोले तो रूप उन्हीं के दिखाई पड़ रहा है। ये स्थिति जब आ जाए उसी को कहते हैं ये मई। हम कभी कभी तो धनमय हो जाते हैं, ये तो इजिली हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं इधर धनमय, धनमय इसलिए धनमय भी हो जाते, मतलब आंख बंद करके धन के बारे में सोचते हैं, स्वप्न में उसके बारे में सोचते हैं, खोल के देखते ये मुझे मिल जाए, ये मेरा हो जाता, ये भी हो जाता, धन संपत्ति के बारे में कभी कभी हमें कुछ हद तक हो जाते हैं। लेकिन राधा रानी किस प्रकार थी, कृष्णमयी, आंख बंद करे तभी कृष्णा, सोच विचार सपना, आंख खोले जो जो रूप देखे कृष्ण स्फुरित हो, कृष्ण स्फुरण हो। स्फुरित शब्द का अर्थ है आप देखते कुछ लेकिन आपका मन में विचार और कुछ आए। माताएं लोग खूब अनुभव किए, आप लोग भी अनुभव किए होंगे, तो आपके छोटे बच्चे होंगे ढाई साल की तीन साल की, वो स्कूल में भेज दिए उसको, गया दस बजे बारह बजे आप आ रहे थे, तो एक काम करके एक चप्पल पड़ा था नजर पड़ गया, आपके बेटे का जैसे चप्पल था उसी चप्पल पड़ा है, और किसी का होगा लेकिन चप्पल देखते ही आपका किसके याद आएगा, बेटे के याद आएगा। अरे छोड़ गए थे ये किसी घर पड़ा, तुरंत याद आएगा, देखे चप्पल याद आएगा बेटे, ठीक है सही है। राधारानी देखेगा किसको, याद आएगा कृष्ण को, किसी को देखेगा याद आएगा कृष्ण को, यही हाल है स्फुरण कहते, जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे, ये कृष्णमयी। और कृष्णमयी का और एक शब्द बोलते किंबा प्रेम रसमय कृष्ण का स्वरूप, तारा शक्ति तारा सहा हय एक रूप, कृष्णमय का और एक अर्थ है कि कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम है, राधा रानी प्रेममयी है, प्रेममय और प्रेममयी है, प्रेम रस का मय है, कृष्ण रसराज है, रसिक शेखर है, तो जो रस है वो राधा रानी है, रस रसिक के साथ रहेगा तब तो रस आस्वादन करेगा, तो इसलिए तारा शक्ति तारा सह भय एक रूप, तारा शक्ति होकर के उनके साथ एक रूप हो जाते हैं, अलग नहीं होते हैं, कैसे एक रूप होते हैं आगे उदाहरण देंगे। मृग मद जैसे, मृग मद कहते हैं कस्तूरी, कस्तूरी जानते क्या होता है, सुने होंगे देखे तो नहीं होंगे, कस्तूरी है एक प्रकार के हिरण होता है, कस्तूरी मृग कहते हैं, उनके नाभि से एक प्रकार चीज निकलते अति सुगंधित द्रव्य, बहुत सुगंधित है, इस सुगंध के कारण वो हिरण भी ढूंढता कहां से सुगंध आ रहा है, पागल होकर वो भी मर जाते। वो कस्तूरी का क्या विशेषता है, कुछ सुगंध है, तो इस सुगंध को उनसे अलग किया जा सकता है, अलग कर दो थोड़ा कस्तूरी कर सकते, ठीक इसी प्रकार एक रूप है ना सुगंध और कस्तूरी, मृग मद तारा गंध है ना एक रूप, मृग मद कस्तूरी उसका गंध जैसे एक ही है, ठीक इस प्रकार कृष्ण के साथ एक हो करके कृष्णमयी जो हो जाती है, कृष्णमय जो हो जाते हैं उनके साथ रस स्वरूप हो करके, प्रेम स्वरूप हो करके उनके साथ एकीभूत हो जाना, इसलिए कृष्णमयी है, हमेशा उनके साथ एकीभूत है, तारा शक्ति तारा सा है एक रूप। इस प्रकार तो देवी कृष्णमयी, मैं बहुत शॉर्टकट में कर रहा हूं, मैं तो और विस्तार है, देवी कृष्णमयी त्वक्ता राधिका परदेवता, परदेवता राधिका परदेवता, परम देवी परम पूज्या, क्यों, क्योंकि संपूर्ण त्रि जगत में एकमात्र श्रेष्ठ परम पूज्य कौन है, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, मत्त परम नाम्यत् किंचिदस्ति धनंजय, किंचित भी मेरे से बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता, असंभव है। हम क्या कहें, ब्रह्मा जी हमारे क्रिएटर हैं, सबसे प्रथम जीव है, उनसे सृष्टि निकला। चतुर्मुख चतुर्वेद के ज्ञाता, डायरेक्ट भगवान के पुत्र, उनके स्टूडेंट, उनके शिष्य, उन्हीं के द्वारा ज्ञान प्राप्त किए हैं। तो पढ़ लिख कर नहीं, डायरेक्ट डाउनलोड किया गया ज्ञान उनमें। भगवान बोले मेरे कृपा से सारे ज्ञान दे देते, लो कोई स्कूल में एडमिशन नहीं, खाता कलम पेंसिल कुछ लगाना नहीं, ऑटोमेटिक भगवान दे दिए। यही से ही भगवान के कृपा सिद्ध, उनके पुत्र, उनके छात्र, उनके भक्त ब्रह्मा वो आए भगवान को, बालक बाल कृष्ण को देखकर यही से बोल्ड हो गए, बोल्ड हो गए, समझ नहीं पाए ये कैसे। लेकिन बाद में जब बुद्धि ठिकाने में आया, सब दंडवत करने आए, हमको तो दंडवत करना बड़ा आसान ही, एक सर है ब्रह्मा जी के, चार सर है ना, पूरा 365 डिग्री घूमेंगे नहीं तो दंडवत ही कम्प्लीट नहीं होगा। एक सर में पूरा अंग नहीं लगा ना, पूरा अंग लगना चाहिए। तो एक सर लगा, फिर एक राउंड लगा, दूसरा सर लगा, एक राउंड, फिर तीसरा, एक राउंड पूरा लगा, तब जाके दंडवत कम्प्लीट होगा। पूरा रोलिंग करने के बाद इतने गिड़गिड़ाए, दंडवत पूरा करके प्रार्थना करके, एक उनकी प्रार्थना से एक श्लोक कहते हैं, जानंतु एव जानंतु। पूरे दुनिया में जो बड़े बड़े विद्वान बोले मैं भगवान को जानता हूँ, ये मूर्ख भले बोले मैं जानतू करके, मैं बोलता हूँ ब्रह्मा, मैं चतुर्मुख वेद वक्ता ब्रह्मा में बोल रहा हूँ। हे प्रभु, आपके अवतार के कारण, आपके जीवों के कल्याण की कृपा के जो कारण, इतने कारण, इतनी कृपा आपके अंदर है, उसको कोई अगर क्वांटिफाई को गिनना चाहे, बोले मैं क्या कहूँ। ब्रह्मा जी एक तुलना देते हैं, बोले अगर आप लोग को कंस्ट्रक्शन करते हैं, आप लोग को मैं आधा किलो रेत दे दूं। बोले भाई आपको लेकर गिन कर बताओ, सारे फैमिली लोग मिल जाना, अब 2 साल तक गिन कर बताओ कितने रेत कण है। 1 किलो रेत दिया, आप कर सकते हैं, कर पाएंगे, सब नहीं आपको आधा किलो, ना आधा किलो रेत कैसे गिन पाएंगे। एक ट्रक लोड बताऊं सब, ट्रक लोड लेते हम तो आंख निकल जाते बाहर, बाबू तो ब्रह्मा जी बोलते हैं हमारे ऐसे भौतिक मनुष्य के लिए तो थर्ड क्लास, उनके लोग तो बोलते ही नहीं, बोले नहीं, लेकिन बोलते हैं मैं उनके बात कहता हूँ, जो गणित गणित करने गणित गिनने वाले कौन, बोले तपलोक ब्रह्मलोक में रहने वाले असमर्थ शक्ति जिनका है, बहुत बड़े बड़े शक्तिधर शक्तिशाली व्यक्ति और बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट लेकर के, मशीन फैसिन लेकर के गिनना बैठेंगे, और क्या गिनेंगे, बोलते पूरे पृथ्वी के भूमंडल को ग्राइंडिंग करके चूर करके पाउडर कर दे। एक नदी का पुलिन में इतने रेत है, मतलब 25 साल से सैकड़ों ट्रक जा करके ट्रक लोड करके रेत लाता है, खत्म नहीं हुआ। एक नदी का पुलिन के इतने रेत, बोले हजारों हजारों करोड़ों नदी जहाँ है, समुद्र है, तालाब है, पूरे पृथ्वी की समस्त सागर नदी पर्वत के समाज ग्राइंडिंग करके पूरा पाउडर कर देते, बोले गिने पूरे भूमंडल को पाउडर करके गिने। हम तो सोच भी नहीं सकते, लेकिन बड़े बड़े गणक 1 करोड़ बैल करके 1000 करोड़ साल लगाकर बड़े बड़े मशीन आकर गिने, बोले ब्रह्मांड बोलते गिन डालेंगे, तो गिन लिए, गिन करेंगे नंबर बताएंगे इतने कण है उसमें, बोले ये भी कम है, उसके साथ और गिनना पड़ेगा। क्या भू पांचव स्विका ख मतलब आकाश, बोले आकाश में अनंत आकाश में जितने बादल है, मेघ दिखाई पड़ता है, सारे मेघ में कितने जल कण है उसको गिनना पड़ेगा। और सूक्ष्म ये फूल छोड़ था फूल को गिनना, बोलते मेघ कण मेघ बादल में कितने जल कण है, जड़ी बस उसको गिनो, उसको ऐड करो उसमें, बोले कुछ लंबा समय लगेगा उसको भी गिन डालेंगे, बोले इतने भी नहीं प्लस द्विभाषा मतलब पूरे आसमान में जितने चमचमाते हुए आलोकित ग्रह नक्षत्र हैं, हम तो एक टॉर्च लाइट लगा दें उसमें कितने आलोक रश्मि निकलता, लाइट पार्टिकल को गिन सकता, हम तो जानते नहीं लाइट पार्टिकल क्या होता ही, जो साइंस पढ़े वो जानते हैं लाइट पार्टिकल होता है कैसा, आलोक कण गिन कर देते, वो तो लाइट पार्टिकल कोई टॉर्च लाइट से नहीं है, पूरे अनंत आकाश में जितने ग्रह तारका नक्षत्र सूर्य चंद्रमा आदि है जिससे लाइट निकलता है, सारे लाइट को गिनो, दिव भाषा जितने द्वितीय संपन्न है भाषमान है, सारे लाइट पार्टिकल को गिनो, तीनों गणना को इकट्ठा कर लो नंबर को, फिर भी है प्रभु में दवा करके कहता हूँ ये नंबर भी कम ही पड़ेगा आपकी गुण वाली के हिसाब से, आप इतने गुणवा समझ में आता है नहीं समझ में, तो वो कैसे हम जानेंगे भगवान इतने गुणवान है, इतने समर्थवान है, इतने समर्थवान होते हुए भी जो उनको इसी कहते हैं ये जो अर्थ बताया पर देवता मतलब कितने पूज्या है, कितने श्रेष्ठ है, जो वो जिनको पूजा करते होंगे कृष्ण जिनको सारे जगत श्रेष्ठ मानकर उनको पूजे, वो जिनको पूजे प्राइवेटली पब्लिक ही दोनों उपाय से पूजे, इसलिए पर देवता परम पूजिता परम पूज्य है, ये उनके विशेषता है, ये राधा रानी जस्ट ऐसे की खड़े इसे मत समझिए, समय हो रहा है इसे बोलते जाएंगे तो बहुत कुछ है उनको बोलने के लिए, ऐसा मुझे इतने कहे राधा रानी के बारे में कि हमारा समझ से परे, इसलिए इतने में हम कहता हूँ अब राधा जी के दर्शन।